ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में संपन्न जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद कहा है कि जीएसटी परिषद ने दो प्रमुख मंत्री समूहों का गठन करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक समूह चिकित्सा और जीवन बीमा संबंधी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर काम करेगा और दूसरा मुआवजा उपकर के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवम्बर में होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा संबंधी नए मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। सुश्री सीतारामन ने कहा कि ये मंत्री समूह अक्टूबर के तक अपनी रिपोर्ट देगा। मंत्री समूह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बीमा मामलों, जीवन बीमा, सावधि जीवन बीमा, समूह बीमा आदि पर भी विचार करेगा। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से जर्मनी की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा अगले महीने जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्स की प्रस्तावित भारत यात्रा का आधार तय करेगी। जर्मनी भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों में से एक है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने फलिस्तीन मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक और स्थिर दृष्टिकोण को दोहराया था और क्षेत्र में यथाशीघ्र युद्ध विराम की मांग की थी। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत द्विराष्ट्र समाधान के जरिए फलिस्तीन मुद्दे के समाधान का निरंतर समर्थक रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने जनता, समृद्धि और प्रगति के फ्रेमवर्क को आपसी भागीदारी का मंत्र बताया। तीनों देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉ जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जाएंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। अमरीका ने कहा है कि वे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में साझेदार बनकर 2022 के चिप्स एक्ट के जरिए निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार निधि के अंतर्गत वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यवस्था के विकास और उसकी विविधता के अवसरों पर मिलकर काम करेगा। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये साझेदारी अधिक समर्थ, सुरक्षित और दीर्घकालिक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के निर्माण में मदद साबित होगी। प्रधानमंत्री कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। तीन दिन के सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक मरीज में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसने हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमणग्रस्त देश की यात्रा की थी। रोगी को विशेष अस्पताल में अलग रखा गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। लोगों के लिए किसी व्यापक संक्रमण के खतरे की कोई संकेत नहीं है। कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर गतिविधियों की मध्य वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएसआर के अंतर्गत शुरू किए गए उपायों की प्रगति का आकलन, समुदाय पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन, उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने पर विचार किया गया। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता क्षेत्र घोषित इलाके में इसराइल के आक्रमण के कारण कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। इसराइली सेना ने कहा है कि उसके विमान ने खान यूनिस में हमास के लड़ाकों के कब्जे वाले एक ऑपरेशन सेंटर पर हमला किया और नागरिकों को नुकसान न हो इसके लिए कदम उठाए। वहीं हमास के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के ऑपरेशंस डायरेक्टर ने कहा है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सेना ने हमास के उन प्रमुख आतंकवादियों पर हमला किया जो खान यूनिस में मानवीय सहायता वाले क्षेत्र के नाम पर बने एक गुप्त कमान और नियंत्रण परिसर से अपना काम कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।